आगे एक बड़ी खूबसूरत सूरत है, सूरत मायदा से बिल्कुल मुख्तलिफ। सूरत मायदा एक मदनी सूरत थी, और जब से कुरान शुरू हुआ है सूरत अल फातिहा से लेकर अभी तक हम मदनी ही सूरतें पढ़ रहे थे, लेकिन अब सूरत अल अनाम मक्की सूरत है। 165 आयतें हैं, 7 डिफरेंट टॉपिक हैं। सूरत फातिहा के बाद पहली मक्की सूरत अब आपके सामने आ रही है। आखिरी दौर में नाजिल हुई मक्का के मोजज़ात का मुतालबा है, हुज्जत तमाम हो रही है, मुसलमानों पे जुल्मों सितम उठाए जा रहे हैं, बार बार वो मोजज़े मांगते हैं और अल्लाह ताला इनकार कर रहे हैं। और याद रखिए, जब कोई कौम मोजज़ा मांगे और उसके ऊपर अमल ना करे तो फिर पकड़ होती है। जैसे अभी पिछली सूरत में हमने देखा कि हजरत ईसा के साथियों ने भी उनसे ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमारे लिए आसमान से कोई खाना मिले। तो याद रखिए कि मोजज़ा मांगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मोजज़ा देख कर भी अगर कोई कौम ईमान ना लाए तो अल्लाह सुबहान तआला फिर उसकी पकड़ कर देते हैं। सूरत अनाम के बारे में आता है कि इसके साथ 70,000 फरिश्ते उतरे थे, मुकम्मल सूरत उतरी थी। इसका भी बुनियादी मजमून तौहीद और शिर्क है, और ख़ास तौर पे जो उस मुआशरे में बिदात और रसूमात थी उनको यहाँ खोल कर रखा हुआ। माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों का तذکرہ इस एक सूरत में। माजी से सबक लो, हाल आज को इस्तेमाल करो और मुस्तकबिल की तैयारी करो। और जो हाल है कल का माजी होगा, आने वाले कल का मुस्तकबिल बन जाएगा। असल बात यह है कि लोग अल्लाह की किताब से नसीहत की बात लें। आइए देखते हैं, बहुत हल्की फुल्की सूरत है और अल्लाह ताला हमें इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वलअर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। कोई और सूरत याद आई? सूरत अल फातिहा। 4 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, उसमें से ये दूसरी सूरत आपके मेरे सामने है। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए और रोशनी और तारीकियां पैदा की, फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं। अब देखिए, शिर्क की नफी और नेमतों पर तवज्जो दिलाने से ये सूरत शुरू होती है। अल्लाह ताला ने इधर इस चीज़ को सामने रखा कि जब लोग अल्लाह का वजूद तस्लीम कर लेते हैं तो उसके हक को भी मानने लगते हैं। फिर दूसरी बात है, यहाँ अंधेरों और रोशनी की बात है। आप देखिए कि हमारे वजूद के दो हिस्से हैं, एक वो है जो मुझे आपका और आपको मेरा दिखता है, ये मादी वजूद है। मिट्टी से खाते हैं पीते हैं, मिट्टी से निकली हुई चीज़ें हम खुद खाते हैं या जानवर जो खाते हैं हम उनके दूध गोश्त को खा के बड़े हो जाते हैं। ये मिट्टी का जो वजूद है ना, इसका दिल करता है कि दुनिया की चीज़ें हमारे पास और बढ़ें, मादा प्रस्ती मटीरियलिज्म। इसके बरक्स हमारे वजूद के अंदर एक रूह है जो अल्लाह ने अपनी तरफ से डाली थी। इस रूह की गजा कुरान है, और ये रूह आसमान की तरफ से आई है। परदेश में आने के बाद भी आपको अपने मुल्क का खाना अट्रैक्ट करता है। किसी ऐसे मुल्क में आप जाएं और वहाँ आपको अपने मुल्क का कोई शख्स नजर आए तो खुशी होती है, इसी तरह हमारी रूह को इस कुरान को सुनकर पढ़कर खुशी होती है। कई आयतें पढ़ते वक्त आप खुद महसूस करेंगे कि इस वक्त मैंने जो आयत पढ़ी है वाकई इसने तो मेरे दिल के तारों को छू दिया। तो कुरान को जितना पढ़ेंगे आपका वजूद बाहर से ज्यादा अंदर से रोशन होता रहेगा, और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़दा अजला। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके हाथ तयशुदा है, मगर तुम लोग हो के शक में पड़े हुए हो। तो शक अमल का दुश्मन है। दुआ करते हैं अल्लाह हमारे दिलों के शक निकाल दे। शैतान ने शक डालकर बहुत सारे लोगों को हिदायत से दूर कर दिया। वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी। कुछ मजाहब में दो खुदाओं का तसव्वुर है, का नहीं दोनों का एक है, क्योंकि बहुत सारे काम दुनिया में जमीन और आसमान की कोऑर्डिनेशन से होते हैं। आसमान का खुदा और होता, जमीन का और होता, कभी फसलें ना पकती, कभी बारिश ना होती। तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो इससे खूब वाकिफ है। गौर व फिक्र कर लीजिए थोड़ा सा, मेरे दिल के भेद जानता है, मेरे दिल की कैफियात को वो जानता है, तो फिर और क्या होगा। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने मट्टी को हुसन दिया हुआ है। साइंस भी कहती है कि मिट्टी से पैदा किया, लेकिन असल बात यह है कि इस मिट्टी के अंदर जो रूह है साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकती। दुआ कीजिए कि हम इस कुरान को पढ़कर अपनी रूह को मुअत्तर कर सकें। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद लोगों का हाल यह है कि इनके रब की निशानियों में कोई निशानी ऐसी नहीं जो कभी इनके सामने आई हो और उन्होंने इससे मुंह ना मोड़ लिया हो। चुनाच जब जो हक इनके पास आया तो इसे भी उन्होंने छुटला दिया। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे, अन करीब इसके मुतालिक कुछ खबरें इनको पहुंचेंगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा। सोचिए जरा माजी की कौमें क्या क्या हालात थे उनके। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, कारून, किधर है सब? तो जब माजी के बड़े ना रहे तो आज के बड़े कब रहेंगे? क्या अल्लाह को इनकी तरक्की बुरी लगती थी? नहीं, याद रखिए, दुनियावी तरक्की पे कभी अजाब नहीं आया। दुनियावी तरक्की के बढ़ने के साथ साथ अय्याशी, शिर्क और कुफर और बिदत जब शुरू हो जाता है तो अल्लाह सुबहान तला उस कौम से फिर नाराज हो जाते हैं। अल्लाह तला से दुआ कीजिए कि आज हम मुसलमानों को जिस तरह अल्लाह ने दुनिया की नेमतें अता फरमाई हैं, हम इन नेमतों को पाकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। वजह बता दी साफ, फहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, इनको हमने जमीन में इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा, इन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और इनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कुफरान ने नेमत किया। हाईलाइट करें, नाशुक्री की सजा हमेशा अजाब की सूरत में मिलती है। तो आखिरकार हमने इनके गुनाहों की पादाश में इनको तबाह कर दिया। इधर अरबी के लफ्ज को हाईलाइट कीजिए, फाहलक ना हम भी जुनूबे। जब कभी जिंदगी में कोई परेशानी आए, बीमारी, हादसा, इमरजेंसी, तो इस आयत को सोच लें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे मेरा वो गुनाह सुझा जो मुझ पर इस तकलीफ के आने का जरिया बना, और इनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है एक कौम को उठाना और दूसरी को गिराना। असल बात यह है कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ऐ पैगंबर, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और ये लोग उसको अपने हाथों से छूकर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने हक का इनकार किया है वो यही कहते कि ये तो सरीख जादू है। यानी इनके मुझसे मांगने को ज्यादा अहमियत ना दो, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े मुझसे देख कर भी नहीं मानना। कहते हैं, इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तब तक कब का फैसला हो चुका होता, फिर इन्हें कभी मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल में ही उतारते और इस तरह इन्हें इसी शुबे में मुबतला कर देते जिसमें ये अब तक रहे हैं। क्या पता चला, मौजज़े मानने वालों को हिदायत नहीं मिलती। देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझिए पारे के थीम को वापस। हबशा वालों ने कौन सा मौजज़ा देखा था? कुरान की आयतें सुनी, दिल पिघल गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन सा मौजज़ा देखकर ईमान लाए? हजरत बिलाल, हजरत अली, हजरत खदीजा, क्या मौजज़े देखकर ईमान लाई थी? वो तो उनके अंदर की पुकार थी, जुबान पे आ गई। तो बहुत मुतालबे करने वाले कभी हिदायत नहीं मानते। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपको तलब थी, आप यहाँ पहुँच गए। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जितनी सिस्टर्स यहाँ आ रही हैं वो दूर दूर से आ रही हैं। कईयों ने राइट के प्रॉब्लम सेटल किए, कई लोगों ने अपने बच्चों को एडजस्ट किया। यदि मैं आपकी बहुत रिगार्ड करती हूँ कि आपको अल्लाह यहाँ लाया है, ये अल्लाह का और आपका मामला है, बट मुझे ये पता है कि आप बहुत मेहनत करके आई हैं, अल्लाह ने आपके लिए जगह ये चूज की थी, लेकिन आपने ये सारी अमेंडमेंट्स, सारी तब्दीलियां, सारी कोशिशें क्यों की? क्योंकि आपके दिल में तलब थी, आप पढ़ना चाह रहे थे। और अगर आप अभी तक मुतालबे ही कर रही होती, उधर करें, वहां करें, चले वहां हो गया, अब कुर्सी नहीं, सोफा लाइए, सोफा ज्यादा नरम हो गया, जरा सा सख्त लाइए, और पाँव नीचे रखने के लिए स्टूल भी रखिए, और हमारे लिए जरा कुछ ये भी इंतजाम कर दें, और ये लाइटें हमें बदल दें, पर्दों का रंग बदल दें, क्या आप सीख के जाती? बहुत मुतालबे करने वाले कभी नहीं मानते। बस ये दुआ करें, हक की पुकार आए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आए। कितनों को शैतान ने रोक लिया, कितनों को शैतान ने पीछे कर दिया और कितनों को शैतान आगे ले जाएगा, ये आपको नहीं पता। तो हमेशा मानने वाला दिल मांगी अल्लाह ताला से। ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जाता रहा, इसको भी हाईलाइट करें। अगर आपका मेरा दीन की वजह से कभी मजाक उड़ाया गया, खुश हो, कोई बात नहीं, नबी सल्लम का भी उड़ाया जाता था, मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो, जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या इंजाम हुआ? इनसे पूछो। कौन सा पूछना ये? शोर को बेदार करना। इंग्लिश में कहते हैं सोल सर्चिंग क्वेश्चन, रूह के अंदर हलचल पैदा करने वाले सवाल हैं। और हर एथियस से ये सवाल पूछे जा सकते हैं जो खुदा को नहीं मानता। क्या? इनसे पूछो आसमान और जमीन में जो कुछ है वो किसका है? कहो सब कुछ अल्लाह का ही है। इसने रहम और करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, इसलिए वो नाफरमानी और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से पकड़ नहीं लेता। क्यामत के रोज वो तुमको जरूर जमा करेगा। ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबे हकीकत है, मगर जिन लोगों ने खुद अपने आप को तबाही के खतरे में मुब्तला कर लिया वो इसे मानते नहीं है। थोड़ा सा रुकिए। इस सूरत में आपको बार बार अल्लाह ताला की रहमत का तज़किरा मिलेगा, तो लिख लीजिए रहम अल्लाह की सिफत है और अदल उसका फेल है। अल्लाह ताला के रहम से आज दुनिया चल रही है, वरना हम जैसा होता तो कब का इस दुनिया को ख़त्म कर चुका होता। तो हमेशा दुआ मांगा करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका इस्तगीस। नबी सल्लम जब बहुत परेशान होते थे ना तो ये दुआ मांगते थे। दिल को सुकून देने वाली ये दुआ है कि अल्लाह तू रहम वाला, तू रहमतें करता है, मुझ पर भी रहम कर दे। आप अल्लाह से ऐसे लाड किया करें, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे ना, अल्लाह ताला आपके तो इतना ज़्यादा रहम है। और फिर रहम कैसे मांगे? अल्लाह ताला मैं अपना ये गुनाह छोड़ना चाह रही हूँ, मेरी आदत बदल ही नहीं रही, आप मुझ पर रहम करें, मेरे दिल से इस चीज़ की मोहब्बत ख़त्म कर दें। आप देखेंगे गैर महसूस तरीके से आप खुद बहुत उस चीज़ के करीब पहुँच जाएंगे जो आप मांग रहे होंगे। फिर उसकी कुदरत की कुछ और बातें, वलहू मा सकना फिल लैली वहुवस समीउल अलीम। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं? सोचिए, इतने बड़े मालिक को छोड़कर क्या छोटे छोटे मालिक ढूंढेंगे? उस खुदा को छोड़कर जो जमीन और आसमान का खालिक है और जो रोजी देता है रोजी लेता नहीं। देखिए, किसी को बादशाह की मुलाजमत मिली हो तो क्या वो उसको छोड़कर किसी छोटे आम आदमी की मुलाजमत को कबूल करेगा? नहीं करेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं ना, कुछ भी ओहदा हो, यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे शौहर अमेजोन में काम करते हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो फलां इदारे में काम करते हैं। क्यों? नाम बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ रुकिए। जिसको अल्लाह के नाम पर, जिसको अल्लाह के रास्ते में काम करने का मौका मिल जाए, क्या फिर उसको खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए? तो अंसारुल्लाह का टाइटल बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत आराम से छिन भी जाता है। दो नफिल पढ़े हर वो साथी जिसको अल्लाह ने इस नाम के अंदर कर दिया। लेकिन याद रखिए, ये नाम मिलता किस बात पे है? इस बात पे मिलता है कि आपकी तलब और तड़प सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करने की है। आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं, आप अल्लाह के नाम को बड़ा करते जाएं, अल्लाह आपके नाम को गैर मखसूस तरीके से बड़ा करता जाएगा। फिर फरमाया, जो रोजी देता है रोजी लेता नहीं, ये अपने बुतों के सामने प्रसाद रखते थे। अल्लाह कहते हैं वो कैसा खुदा है जिसको तुम खाने खिलाते हो, हमारा खुदा तो वो है कि जो हमें खिलाता है। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि सबसे पहले मैं इसके आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। और ताकीद की गई कि कोई शिर्क करता है तो करे, तू बहरहाल मुशरिकों में शामिल ना हो। कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं एक बड़े खौफनाक दिन से, मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। आगे आयते तदब्बर। सोचिए जरा, किसी भी दावत को बड़े प्यार से और बड़े आराम से आप नो कह सकते हैं अगर ये आयत लिख के रख लें, वजीफा बना लें इसका। जब कभी किसी ने आपको खिलाफ शरा काम करने की दावत दी, आप चुपके से ये आयत और उसका तर्जुमा उसके हाथ में थमा दें। मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं? जैसे मुझे किसी की बात याद आती है, किसी ऐसी जगह मेहमान बन कर गए कि जिनके खाने में कोई मशकूक चीज थी कमाई की वजह से, और चूंकि उन्होंने खुद बता दिया तो फिर इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। जब किसी ने उनको फोर्स किया कि आप खाना खा लें, आप तो मेहमान हैं, आपका क्या जाता है, आप तो मजबूर हैं, चलें। मिसाल है कि आपके ऊपर पकड़ भी, तो आप कह दीजिए कि मैं मजबूर हूं। तो उन्होंने जुमला बोला था वो इससे बहुत मिलता हुआ था, कहा मुझे डर लगता है कि अल्लाह मेरी नमाज और मेरी दुआएं कबूल करने से मुझे महरूम ना कर दे, मैं क्यों एक वक्त का खाना खा के अपनी बातों को मशकूक करूं। याद रखिए, ये है हक और बातिल की कशमकश में से एक ईमान वाले का जवाब। और मुनाफिक का कुछ नहीं होता, और काफिर कहेगा वो ये गुनाह है ही कोई नहीं। हमेशा याद रखें, इंसानों की इस दुनिया में आपने मैंने वो चीज़ चूज़ करनी है जो मुझे और आपको अल्लाह के करीब ले जाए। और याद रखें, यहाँ शक की बात है ना, शक कब पैदा होता है, ये बहुत अहम बात है। यहाँ कुछ लोग दीन को बहुत डाइल्यूट करके पेश कर देते हैं, सब जायज खाओ, आज के दिन जायज, इस हालात में जायज, इस मुल्क में जायज, आज की नस्लों के लिए जायज। अब दूसरे लोग कहेंगे नहीं, कुरान सुन्नत कुछ और कहते हैं। यहाँ आम लोगों के दिलों में शक है, वो बड़े सख्त है, वो बड़े मीडियम है, वो बड़े नरम है। लोग किसके पास जाएंगे? नरम के पास, क्योंकि उनके कंधे पे तलवार रख के चलाएंगे कि अल्लाह उन्होंने कह दिया तो हम करें। इससे आवाम में शक आता है। दूसरा शक कब आता है? जब दो दीन वाले आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालता है, दूसरा तीसरे पे उछालता है। आम लोग शक में पड़ जाते हैं, किसकी सुने किसकी ना सुने, किसकी माने किसकी ना माने। तो अल्लाह सुबहाना तला कहता है, फरमाते हैं कि ऐसे लोग जब दुनिया में इस किस्म का दीन पेश करते हैं तो उससे मुश्किल है। तो याद रखिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जो आज के दौर में हक को मशकूक बनाने वाली है, वरना हक तो अपनी जगह बहुत वाज़े है। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके, और अगर तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद कर दे तो वो हर चीज़ पर कादिर है, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियार रखता है और दाना और बाखबर है। ये थी वो आयत जो सहाबा कराम को समझ आ गई थी कि मेरे हिस्से का नफा कोई नुकसान में नहीं बदल सकता, और अगर मेरे नसीब में कोई नुकसान है तो सारी दुनिया मिलकर उसको नफे में नहीं बदल सकती। इस सोच ने उनको हक और बातिल की कश्मकश में निकाल दिया। और समय नवात आना, फिर वो शराब के जाम भी तोड़ गए, वो मनपसंद खाने की चीजें और शिकार की चीजों को भी छोड़ गए। इसकी जरूरत है आज मुझे और आपको। आज शक को निकाल कर कहिए, जब देना रब ने, जब लेने का इख्तियार उसका, तो मैं दूसरों से क्यों डरूं। लोग कहते हैं ना कि जिसका खाओ उसके गुण गाओ, कहते हैं ना, तो किसका खाते हैं? तो गुण उसके गाइए। जिससे कुछ लेना है उसी से डरिए। कितनी ना फरमानी है, खाते उसका, मांगते उससे और मानते किसी और की। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ बजरिया वही भेजा गया ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुंचे सबको मुतनब्बेह कर दूं। बड़ी खूबसूरत आयत है, इसको हाईलाइट कीजिए, कुरान की सिफत है इसमें। और वो क्या है? वमम बलग, कुरान किसको पहुंचता है? आज आपको मुझे पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत में ये बात बताई जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कुरान का ये तोहफा देकर चले गए। आज मुझे आपको ये कैसे पहुंचता है? सईद बिन जुबैर एक मुफस्सिर है, कहते हैं जिसे कुरान पहुंच गया गोया कि उसकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। कई आयतें पढ़ते वक्त आपको खुद नहीं महसूस होता, मुझे तो होता है कि बिल्कुल मक्का या मदीना की उस गली में यह आयत उतर रही है और मेरा प्यारा नबी वहां बैठा है। तो ये कुरान पहुंचना छोटी बात नहीं है। रबी बिन अनस कहते हैं जिसे कुरान पहुंच गया अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उस पर नजीर हूं, यानी अब उस पर हुज्जत तमाम हो गई। तो जरूरत इस बात की कि इस कुरान को दिल के शौक के साथ लिया जाए। क्या वाकई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं? कहो मैं तो इसकी शहादत हरगिज नहीं दे सकता। कहो खुदा तो वही एक है, मैं उस शिर्क से कतई बेजार हूँ जिसमें तुम मुबतला हो। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को इस तरह गैर शुबे के पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानने में इनको कोई शुबा पेश नहीं आता, मगर जिन्होंने खुद अपने आप को खसारे में डाला। الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون, वो कभी इसको नहीं मानते। देखिए यहाँ पहचान की बात है। अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदी आलिम थे, अल्लाह ने उनका सीना खोला, मुसलमान हो गए। कहा करते थे मैं अपने बेटे के बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि वाकई ये मेरा बेटा है, मैं नहीं जानता औरतों ने क्या गुल खिलाए हैं, लेकिन मैं इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह सकता हूँ ये वही नबी हैं जिनका जिक्र पिछली किताबों में था। देखिए इंसान अपने बेटों को ऐसे अंधेरों में भी पहचान लेता है। चाबी लगाने के अंदाज से ही माँ कह देती है फलां आ गया, ये मोहसिन आ गया, ये मुस्तफ़ा आ गया, ये फलां आ गया, ये फलां आ गया। माँ को पता होता है बेटा जो पेट में 9 महीने रखे उसको बंदा पहचाने। तो वो नबी जिसका जिक्र पिछली किताबों में मौजूद है उसको ना माने, और कितने अफसोस की बात है कि जिनके सरों पर सूरज चमक रहा हो वो अंधेरों में भटक रहे हो, जिनकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। असल बात यह है कि मुझे आपको इस चीज को आम करने की जरूरत है। इस कुरान को अगर आप रिलेट करके लोगों को दिखाएं कि देखो ये मूसा को भी मानता है, ईसा को भी मानता है, मोहम्मद सल्लम को भी मानता है, तो हो सकता है कई लोगों के दिलों के दरवाजे खुल जाएं। और फरमाया वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कसीबा व कज़्ज़ब भी आयाती ही, इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की आयतों को झुठलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाते। दुआ करें अपने लिए कुरान के किसी हुक्म को झुठलाने की अल्लाह हमें तौफीक ना दे। जिस रोज हम इन सब को इकट्ठा करेंगे, अब आप इमेजिनेशन में मैदान हशर में पहुंच जाए और वहां का एक सीन देखिएगा। जिस रोज हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे। उम्मीदें लगी हुई थी ना, करनी वाले बचाने वाले पहुंचे हुए, तो पूछा जाएगा आज किधर है वो। जवाब सुनिए, तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे, यानी कोई बहाना और उनको नहीं सूझेगा कि ये झूठा बयान दें कि हमारे आका तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक न थे। देखो इस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर झूठ खड़ेंगे और वहां इनके बनावटी माबूद सब गुम हो जाएंगे। वहां पहले तो एकदम भुकलाहट में कह देंगे हमने तो कभी नहीं शिर्क किया, हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि फला दाता और फला देने वाला और फला लेने वाला। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर जरा सी हकीकत समझ आएगी तो बहाने बनाएंगे। आप देखिए शिर्क क्या है, लोगों ने अपनी इमेजिनेशन से तसव्वुर बनाया, किसी ने बुत को, किसी ने पत्थर को, किसी ने बुजुर्ग को। तौहीद के अल्लाह को एक मानो और अल्लाह को ऐसा मानो जैसा मानने का उसने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे शिर्क के कले कमे में अल्लाह ताला हमें अपना किरदार अदा करने वाला बना दे। इनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए जिनकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में बोझ डाल दिया कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। पहले तो दुआ कीजिए कि हम ऐसे ना हो। बाज लोग जाहिर जिस्म के कानों से सुन रहे होते हैं लेकिन दिल के कानों से नहीं सुन रहे होते हैं। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें इस पर ईमान न ला कर देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक पुरानी कहानी के सिवा और कुछ नहीं। वो इस अमरे हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी से दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि वो दरअसल खुद अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं। बात सच है, जो लोग इस किताब से दूसरों को रोकते हैं ना, असल में वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। अब दोबारा एक और आखिरत का मंजर, सूरत अल-अनाम में आपको क्यामत के मनाजिर बहुत सारे दिख रहे हैं। क्या फरमाया वलौ तराइज वकीफ वलन्नार फकालू या लैतना नुरद्दु नुरद्दु ला नुकज्जिब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। काश तुम इस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे। इस वक्त वो कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना झुठलाएं। ये जो मैं बीच में रुकती हूँ ना, ये आपके सोचने का वक्त है। और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं, क्या उस वक्त इस हसरत से फायदा होगा? कभी भी नहीं होगा। याद रखिए तौबा टाइम बाउंड चेक है, मौत के साथ ही एक्सपायर हो जाता है। जिंदगी में अगर खुदा को नहीं माना तो उस दिन मानना फायदा नहीं देगा। हदीस याद कर लीजिए, ला तजूल कदम इब्ने आदम इंदे रब्बी, आदम का बेटा अल्लाह के सामने से कदम नहीं हटा सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे दे। और हैरत की बात है कि इस दुनिया में सारे सवालों का बता भी दिया था। देखिए ओपन बुक टेस्ट हो, किताब खोल के जवाब लिखने हैं, हिसाब का पर्चा सब कुछ दे दिया जाए पहले से, फिर भी कोई फेल हो जाए तो किसका कसूर है? उसने सीरियसली नहीं लिया। अल्लाह ने कब्र के 3 सवाल, हशर के 5 सवाल सब लिख के दे दिए, और ये किताब सिलेबस है। जिन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा उन्होंने जवाब क्या देना है? टपक टोइया तुक्के नकल मार के इधर से उधर। आज उम्मत मुस्लिमा से अक्सर का हाल नकल मारने वाला है, कुछ उधर से मारते हैं कुछ उधर से मारते हैं। ये बुक पढ़िए, पढ़ लो। थोड़ी सी अरबी कोशिश करके सीखो, लफ्जी तर्जमा सीखो, तुम्हें ये अरबी समझ आने लग जाएगी। ये मेहनत करनी मुश्किल है, नतीजा के अभी मुझसे पूछ, कभी उससे पूछ, कभी दूसरे से पूछ, और जब कहा जाए आओ इस किताब को पढ़ो, नो आई एम टू यंग, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, आई एम ओनली 18, अभी तो नहीं मैं पढ़ सकती, अभी तो बहुत कुछ और पढ़ना है। याद रखिए, कुछ लोगों ने जहनी तौर पे इस चीज़ को तस्लीम किया हुआ है, हमने ज़िंदगी में नहीं पढ़ना इस कुरान को, तो याद रखिए ये तो फिर मौका जन्नत में जाकर भी नहीं मिलना। अल्लाह ताला हमें इसी ज़िंदगी में से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। फरमाए बल बदा लहुम मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल, दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो इस वक्त बेनकाब होकर इनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर इन्हें पिछली जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए, सोचिएगा, तो वो फिर वही सब कुछ करेंगे जिससे मना किया गया था। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठी से काम लेंगे। कितनी दफा जिंदगी में मौका मिलता है, मरते मरते बंदा जीता है, हर मरने वाले को देखकर हम तौबा नहीं करते, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अब 5 नमाजें पढ़ूंगी। हर साल रमजान में कितनी नेकियों की नियत करता है बंदा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ रुद्दू लआदू लिमा नहू अन्हु, इनको दोबारा भी वापस दुनिया में भेजूंगा, ये वही कुछ करेंगे जिससे इनको रोका गया। वह इन्नहुम लकाज़िबून, जो बनाता है वो नहीं जानता। अल्लाह ताला कहते हैं अला यालमु मन खलक, सूरत मुल्क में आता है, क्या वही ना जाने जिसने तुमको पैदा किया। तो माँ बच्चे की अंदर की रग भी पहचान लेती है, ये खुश है, ये नाराज है, ये बीमार है, ये दुखी है, ये कोई बात छुपा रहा है। तो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा है वो जानती है, तो अल्लाह नहीं जानता कि बंदा क्या करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी नेकी का मौका मिले उसको अवेल कर लें, वरना हसरत होगी। फिर इसके बाद फरमाए बकालु इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, आज जो लोग कहते हैं जिंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, लगता है लाइफस्टाइल से आज यही हालात है, सिर्फ जीने की फिक्र है, जाने की कोई तैयारी नहीं। हालांकि जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए ताकि अचानक जाना पड़े तो मुश्किल ना लगे, और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा ना उठाए जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, इस वक्त इनका रब इनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है, ये कहेंगे हाँ है हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा अच्छा अब अपने इनकारे हकीकत के पादाश में अजाब का मजा चखो, अब क्या फायदा मानने का। खसीरल्लज़ीना, देखिए बार बार हसारे का लफ्ज है, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अब इस जुमले पे भी जरा सा गौर, क्या कहेंगे। قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها, अफसोस हमसे इस मामले में कितनी कमी बेशी हो गई, यानी हमने अल्लाह का हक कितना कम दिया और दुनिया को उसके हक से ज्यादा दे दिया। और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे, देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं, और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो नुकसान से बचना चाहते हैं, क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लोगे। अब देखिए यहाँ बोझ की बात है, क्यामत के दिन नेक अमाल हमारी सवारियाँ होंगे, हदीस में आता है मोटी मोटी कुर्बानियाँ किया करो, पुल सरात पर ये तुम्हारी सवारियाँ होंगी, बिल्कुल इसी तरह बुरे काम हम पर लादे जाएंगे, समझे, नेकियों के ऊपर हम बैठकर जाएंगे और बुराइयाँ हमारे कंधों पे सवार होंगी। फिर मैं किसी के कंधों पे गाय, किसी के ऊंट, किसी के बकरी, और यूं लाइनें लगी होंगी शोल्डर्स के ऊपर, जितना दुनिया में गुनाह कमाया वो क्यामत के दिन बोझ बना होगा, अल्लाह ताला बचा के रखे। तो ये 4 दिन का खेल तमाशा अल्लाह के तअक्कुल से देखो, और अल्लाह के नबी को जितना वो सताते थे, जितना आपका दिल दुखता था, उतनी आसमान से तसल्ली आती।